रॉयल गेस्ट हाउस। जानवी अपने फ्रैक्चर लिए पैर के साथ बेड पर लेटी हुई थी और उसके दोनों हाथ को क्रॉस करके सिर्फ यही सोच रही थी कि वो यहाँ से निकले कैसे। पृथ्वी को पता था कि जानवी फिर से कोई ना कोई नया कांड जरूर करेगी, इसीलिए वो आज रात गेस्ट हाउस में ही रुका था। उसने आस्तिक को एक मैसेज कर दिया था कि वो आज रात घर नहीं आ पाएगा, लेकिन आस्तिक ने वो मैसेज अभी तक देखा नहीं था क्योंकि इस वक्त वो अपने कमरे में था और उसका फ़ोन स्टडी रूम में ही रह गया था। पृथ्वी अपने कमरे में बैठा हुआ सिर्फ यही सोच रहा था कि जानवी को दिल्ली जाने की इतनी भी क्या जल्दी है। अगर घर परिवार की बात है तो वो इन्फॉर्म भी कर सकती है कि यहाँ उसके साथ एक हादसा हो गया है जिस वजह से वो अभी घर नहीं आ सकती है। लेकिन जानवी तो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है, जैसे कि पृथ्वी उसे कैद करके रख रहा है। पृथ्वी अपनी ही सोच में बैठा हुआ था तभी उसे बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। पृथ्वी हैरान रह जाता है, कहीं जानवी को चोट तो नहीं लग गई होगी, वैसे भी वो लड़की एक हाथ और एक पैर से तो घायल है ही। पृथ्वी गुस्से से अपने कमरे से निकलता है और तेजी से गेस्ट रूम की तरफ बढ़ता है, पर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर अंदर देखता है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसका अंदाज़ा सही था, जानवी सच में अपने एक पैर पर खड़े होकर दूसरे पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही थी और इसी चक्कर में पानी का जग गिर गया। पृथ्वी गुस्से में जानवी के पास आता है और उसे देखते हुए कहता है, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? चला जा नहीं रहा है और उठकर चलने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती है क्या? जब मैंने कहा है कि तुम्हें बेड से नहीं उठना है तो इस बात का तुम्हें मतलब क्यों नहीं समझ में आ रहा है? तुम्हारे पैरों में चोट लगी है, हाथों में चोट लगी है। जानवी पहले तो हैरानी से पृथ्वी को देख रही थी और फिर जब पृथ्वी नॉनस्टॉप बोले जा रहा था तो जानवी को भी गुस्सा आ गया और उसने साइड टेबल में से एक एप्पल उठाकर सीधे पृथ्वी के मुंह में डाल दिया। पृथ्वी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और उसके मुंह में एप्पल था। जानवी पृथ्वी को देखती है और अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहती है, समझ गई हूँ तुम्हारी बात, मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ कि मुझे यहाँ से 15 दिन तक उठना नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेड पर पड़े पड़े ही सारे काम हो जाते हैं। टॉयलेट बाथरूम जाने के लिए तो इंसान उठेगा ही ना, क्या चाहते हो, बेड पर कर दूँ? पृथ्वी ने थी अपने मुँह से वो एप्पल निकाला और उसे वापस टेबल पर रखते हुए जानवी से कहा, खबरदार जो बेड को गंदा किया तो, और अगर तुम्हें वॉशरूम ही यूज़ करना था तो सर्वेंट को आवाज़ दे देती, तुम्हारी हेल्प करता, खुद लंगड़ी खेलने की क्या ज़रूरत थी? जानवी ने अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान ली और अपना एक हाथ बढ़ाकर पृथ्वी की ठुड्डी पर रखा और उसका चेहरा घुमाते हुए उसे घड़ी में देखने का इशारा किया। पृथ्वी देखता है रात में घड़ी के 12 बज रहे हैं। वो हैरानी से जानवी को देखने लगता है तो जानवी कहती है, तुम्हारा काम होगा चौकीदारों वाला, रात में उल्लू की तरह जाग कर करने के लिए, पर बाकी दुनिया जो मेहनत करती है ना वो रात में चैन से सोती है। तुम्हें क्या लगता है इतनी रात को तुम्हारी सर्वेंट क्या तुम्हारे ऑर्डर का इंतजार कर रहे होंगे? अब तक सो नहीं गए होंगे? पृथ्वी को गुस्सा बहुत आ रहा था लेकिन वो इस लड़की से क्या ही बहस करता। पृथ्वी ने कहा, अच्छा ठीक है चलो मैं तुम्हें वॉशरूम ले चलता हूँ। जानवी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई तो पृथ्वी ने कहा। जानवी का रिएक्शन देखकर पृथ्वी समझ गया कि जानवी क्या सोच रही होगी। उसने नामेकर हिलाते हुए कहा, इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ और मैंने बहुत से मरीजों को बहुत तरीके से देखा है, तुम्हारे पास कुछ भी ऐसा खास नहीं है जो मुझे देखना पड़े। जानवी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो गुस्से में पृथ्वी को उंगली दिखाते हुए कहती है, कहीं तुमने मेरे कपड़े सर्वेंट पे बदले हैं? पृथ्वी ने जानवी के दिमाग में पल रहे इस खुराफात को पहले शब्द के साथ ही नकार दिया। जानवी अभी भी बड़ी बड़ी आंखों से पृथ्वी को देख रही थी तो पृथ्वी वॉशरूम की तरफ जाते हुए कहता है, मैंने कहा ना तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए मुझे ये सब करना पड़े। पृथ्वी ने वॉशरूम का दरवाज़ा खोल दिया और धीरे से जानवी के पास आता है। वो जानवी को कंधे से सपोर्ट देता हुआ उसे धीरे धीरे करके वॉशरूम की तरफ लाने लगता है। अंदर ले जाकर जानवी को वॉश बेसिन के पास खड़ा करता है और उसे कहता है, पानी यहाँ से ऑन होगा, और उसके बाद पृथ्वी वॉशरूम से बाहर आ जाता है। जानवी बस हैरान नज़रों से पृथ्वी को देखे जा रही थी और पृथ्वी वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद जानवी ने वॉशरूम यूज़ किया और दोबारा से वॉश बेसिन के पास खड़े होते हुए कहती है, अंदर आ जाओ। पृथ्वी अंदर आता है और जानवी को धीरे धीरे करके बाहर लाता है। वो बेड के पास लाकर जानवी को बेड पर बिठाता है और कहता है, अपने पैर और दिमाग पर ज़्यादा जोर मत देना। पृथ्वी जानवी के कमरे से जा चुका था और जानवी हैरानी से पृथ्वी को जाते हुए देख रही थी। अब तक की सारी घटनाएं जानवी एक एक करके याद करने लगती है। उसे पृथ्वी का बिहेवियर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था जिससे उसे खतरा महसूस हो सके। अब तक पृथ्वी ने उसके साथ अच्छे से ही बिहेव किया था, लेकिन फिर भी जानवी के मन में कुछ बातें चल रही थीं। इसके बारे में वो कल डिटेल में बात करेगी। अगले दिन सुबह पृथ्वी अपने कमरे से निकलकर बाहर हॉल में आता है। उसकी आंखें छोटी हो जाती है। जानवी पहले ही हॉल में बैठी हुई थी। पृथ्वी उसके पास आते हुए कहता है, तुम अपने कमरे से बाहर कैसे आई? तभी एक सर्वेंट वहां आते हुए कहती है, छोटे साहब मैं लेकर आई हूँ, दीदी ने सुबह मुझे कहा था कि वो अपने कमरे में नहीं रहना चाहती है तो मैं उन्हें हॉल में ले आई। सर्वेंट कॉफी की ट्रे वहीं टेबल पर रखकर चली जाती है। पृथ्वी जानवी के सामने बैठकर एक कॉफी का मग उठा लेता है और जानवी एक कॉफी का मग उठा लेती है। जानवी एक कॉफी का सिप लेते हुए पृथ्वी से कहती है, आपका नाम क्या है? पृथ्वी, जो कि कॉफी पीने ही वाला था, इस सवाल के साथ चौंकते हुए पूछता है, क्या कहा तुमने? जानवी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पृथ्वी को देखते हुए कहा, नाम, नाम क्या है आपका? पृथ्वी ने अपने रुबीले अंदाज में कहा, डॉक्टर पृथ्वी रायचंद। जानवी ने अपना कॉफी का कप टेबल पर रखते हुए अपने दोनों हाथ बांधे और पृथ्वी को देखकर कहा, पृथ्वी जी, हमें एक फोन करना है।